हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की भागवतम क्लास में स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है इतने सब लोग हिंदी की भागवतम क्लास में यहाँ आए हैं। 1974 में श्रील प्रभुपाद ने इस वृंदावन में इंग्लिश की भागवतम क्लास का सिस्टम शुरू किया था। केवल इंग्लिश में भागवतम क्लास होती थी टेंपल रूम में। और 1984 में, उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी, मैंने ये हिंदी की क्लास शुरू करी थी। अब यहाँ हिंदी की क्लास में भी लगभग उतने ही लोग हैं। हमने ये हिंदी की क्लास केवल दो भक्त आते थे उनके लिए शुरू की थी, क्योंकि उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी और हमारे पास कोई हिंदी में प्रवचन करने के लिए भी नहीं था। तो इसलिए भक्त लीडर होने के नाते मुझे स्वयं ही ये क्लास करनी पड़ती थी। लेकिन बाद में और काफ़ी सारे हिंदी स्पीकिंग प्रवचनकर्ता आ गए तो मुझे ये देख के हमेशा हर्ष होता है कि कितने सारे भक्त लोग इस हिंदी की क्लास का लाभ उठा रहे हैं। तो आज हम छठे स्कंद में 8वें अध्याय पे, अध्याय का नाम है नारायण कवच। ये कवच में बहुत सारे श्लोकों में कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए आपके सामने 42 लिखा हुआ है, क्योंकि 42 में थोड़ा सा तात्पर्य है। कल कितना नंबर किया था? 31? 33? 33 कर लिया, तो हम 34 से शुरू करेंगे। क्विकली मैं रीड कर लूँगा और अनुवाद भी पढ़ दूंगा, और फिर 42 से जो श्लोक आपके सामने है वो आप सब लोग साथ में कीजिएगा। विदुक्षु दीक्षु ध्वर्मत समन्ता दंत बहिर्गर भगवान नरसिंह प्रहाय लंबो कथयम स्वनेना स्वतेजसाग्रस्त समस्त तेजाः। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया, अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करने वाले श्री नरसिंह देव, आप उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें जो विष आयुध जल अग्नि वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर लें। नरसिंह देव समस्त दिशी दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी रक्षा करें। जैसे हम कहते हैं, बाहर नरसिंह हृदय नरसिंह। नेक्स्ट श्लोक। मदवन्निदमाख्यातम वर्म नारायणात्मकम विजेश्यसे अन्नयेन दंशितो असूयूथपान। विश्वरूप ने आगे कहा, हे इंद्र, मैंने तुमसे नारायण के इस गुप्त कवच को क्या सुनाया है? तुम इस सुरक्षात्मक कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में निश्चय ही समर्थ हो गए। नंबर 36 एतद्धरायामणस्तु यम पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पर्शिद्ध सात्वा सत्सविमुच्यते। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू देता है वह तुरंत ही उपयुक्त समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। न कुत्तिष्यत दयभातस्य विद्याम धारयो भवेत् राजदस्यु ग्रहादिभ्यो व्याय दिव्यश्च कहिर्चित। नारायण कवच नामक यह स्त्रोत नारायण के दिव्य रूप से संबंध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्त्रोत का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा ना तो विचलित किया जाता है और ना ही सताया जाता है। इमाम विद्यापुरा कलिश्चत्योकाशको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांग जहो समरुध्वनि। हे देवेंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया था और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। तस्योपरि विमानेन गंधर्वपतिरेकदा ययो चित्ररत स्त्री भीर्वतो यत्र द्विजक्षय। एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्व लोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वह ब्राह्मण मरा था और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। गगन्नाया तत्पत सद्यो सविमानो हविक्षरा सविलिख्य दिश्यन्ति विस्मित प्रास्य प्राचीर सरस्वतयाम सनत्ययाम धाम स्वम गातः। अचानक चित्ररथ के बल अचानक चित्ररथ के बल अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया अचानक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। उसे आश्चर्य हुआ। वालिखिल्य मुनियों ने उसे आदेश दिया था कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा तथा अपने धाम लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। अब आगे श्लोक नंबर 41। श्री शुक उवाच य इदं षडयु यत् काले यो धारयति चाद्दतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यन्ते सर्वतो भयात्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का प्रयोग करता है अथवा इस विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है वह भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। अब हम श्लोक 42 पे आ गए, ये वाला। अब आप लोग पीछे से बोलिएगा। एताम विद्यामाधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यामृदे सुरा एतां यः विद्यां स्त्रोत अधिगतः प्राप्त विश्वरूपात् विश्वरूप ब्राह्मण से शतक्रतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने त्रैलोक्य लक्ष्मीम तीनों लोकों का समस्त ऐश्वर्य बुभुजे भोग किया विनिर्जित्य जीतकर मृदे युद्ध में असुरान सभी असुरों को अनुवाद 100 यज्ञों को करने वाला राजा इंद्र ने इस रक्षा स्त्रोत को विश्व रूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्य का भोग किया। प्लीज रिपीट 100 यज्ञ करने वाले राजा इंद्र ने इस स्त्रोत को विश्व रूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्यों का भोग किया। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की विश्व रूप द्वारा स्वर्ग का राजा इंद्र को प्रदत्त यह गुह्य मंत्रमय कवच इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इंद्र असुरों को जीत सका और अबाध रूप से तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग सका। इस प्रसंग में मध्वाचार्य का कहना है विद्या कर्माणि च सदा गुरो प्राप्त फल प्रद अन्यथा नैव फलदा प्रसन्नोक्त फल प्रदा। अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करे अन्यथा मंत्र सफल नहीं होता। भगवद गीता 4:34 में भी ऐसा ही कहा गया है तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जाने। तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्रों को वैद्य गुरु से ही ग्रहण करना चाहिए और शिष्यों को चाहिए कि गुरु के चरण कमलों की शरण में जाकर उसे सभी प्रकार से प्रसन्न रखे। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फल मता। शिष्य परंपराएं या संप्रदाय चार प्रकार के हैं ब्रह्म संप्रदाय रुद्र संप्रदाय श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इन प्रमाणिक संप्रदायों में से किसी से भी मंत्र ग्रहण करे अन्यथा वह आध्यात्मिक जीवन में कभी अग्रसर नहीं हो सकेगा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो यहां इस चैप्टर को अब हमने एंड कर दिया। सारा नारायण कवच पूरा हो गया और श्रील प्रभुपाद ने इसमें से बहुत सारे श्लोकों का कोई तात्पर्य नहीं दिया। अब आखिरी श्लोक में श्रील प्रभुपाद 42वें में तात्पर्य दे रहे हैं, तो वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो मंत्र और गुह्य मंत्र या कवच ये सब हमें प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त करने चाहिए। पहले श्रील प्रभुपाद मध्वाचार्य को कोट करते हैं कि मध्वाचार्य कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होता। ये बात अभी भी सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीच में चैतन्य महाप्रभु ने आके जो महामंत्र उसको फ्री कर दिया। किसी को भी महामंत्र लेने की जप करने की इजाजत दे दी, चाहे कोई वैश्य शूद्र मलेच्छ कोई भी है। कुछ लोग बाहर खड़े, अंदर आने का जगह नहीं, आगे बहुत जगह है, अंदर आ जाइए, आगे बहुत जगह है, वहां से अंदर आने का रास्ता बना दीजिए प्लीज, जो भक्त लोग अंदर आ सके, आगे बहुत जगह है बैठने की, पीछे जो कोई आए उसको आगे भेज दो आगे बैठने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कि जैसे कि आपने सुना है बहुत निंदा होती थी, लोग चैतन्य महाप्रभु की बहुत निंदा किया करते थे कि ये कैसा सन्यासी है, ऐसे ही सड़क पे नाचता है और मंत्र भी सबको बांट रहा है, मलेच्छों को भी कोड़ियों को भी। ऐसे कोई मंत्र दिया जाता है किसी को, ये मंत्र तो ब्राह्मणों के लिए। और चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम से लोगों को ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव की कैटेगरी में सेट कर रहे थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का इतना निंदा हुआ, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मंत्र को ऐसे ही बांट देना भी ठीक नहीं है। यहां पे तो लिखा है के ग्रहण करना चाहिए केवल गुरु से, और क्या गुरु के लिए ठीक है कि वो सबको बांट रहा है ऐसे ही, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ही किया और हमें भी ऐसा ही करने के लिए कहा। क्यों? इज इट एकलव्य प्रभु कम, आई कांट सी वेरी मच विदाउट माई ग्लासेस, आई कांट सी यू सिटिंग डाउन देयर, प्लीज कम, समबडी गेट अ कुशन फॉर एकलव्य प्रभु, देयर्स अ चेयर। सो मंत्र को ऐसे ही बांट देने को शास्त्र की रीति नहीं है, ऐसे ही मंत्र लेने का या मंत्र को जप करने की भी शास्त्र की नीति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जा रहे देखे तारे कहे कृष्णा उपदेश, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला। कोई नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं बताया, कभी भी करो, कैसे भी करो, शुद्ध अवस्था में करो, अशुद्ध अवस्था में करो, कैसे भी नाम जाप करने के लिए सारे नियम तोड़ दिए चैतन्य महाप्रभु ने। क्यों तोड़ दिए? क्यों सारे नियम तोड़ दिए? इसलिए क्योंकि वो युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, एक नया युग एक नया धर्म। और जैसा कि पहले भी नारद मुनि ने बताया हुआ था, हमेशा से नाम की महिमा तो रही है, लेकिन नाम का इतना प्रचार कभी किसी ने नहीं किया जितना स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। फिर भी उसका अर्थ ये नहीं है कि अब अगर हमें नाम ऐसे ही मिल जाता है तो हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता तो फिर भी है, लेकिन हम नाम जब स्टार्ट करने से पहले गुरु की आज्ञा या गुरु की परमिशन या दीक्षा हो वो नहीं मानते। ज्यादातर बाकी के सभी संप्रदाय ऐसे ही हैं कि आप नाम जप तब तक, मंत्र का जप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको गुरु ने वो मंत्र दे के ऑथराइज नहीं कर दिया। लेकिन हमारे ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सबको ऑथराइज किया हुआ, ना केवल मनुष्य, पेड़ पौधे लता कोई भी जानवर। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड फॉरेस्ट में जा रहे थे, रास्ते में एक शेर पगडंडी पे लेटा हुआ था, कोई रोड थी नहीं, हाईवे था नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे भी अभी बना नहीं था 500 साल पहले, तो सब लोग पगडंडी पे ही चलते थे। पगडंडी पे शेर था, पीछे से देखा बलभद्र भट्टाचार्य जो उनके असिस्टेंट थे कि ये तो शेर बीच में लेटा हुआ है और चैतन्य महाप्रभु तो ऊपर मुंह करके ऊपर देख के जप कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, नीचे तो ये देखेंगे नहीं, और शेर उसमें लेटा हुआ है उसके ऊपर कहीं पैर नहीं रख दें। इतनी देर में उसको डर लगा, इतने में तो पैर रख दिया। अब सोए हुए शेर के ऊपर किसी ने आके पैर रख दिया, शेर तो बहुत हड़बड़ा के उठा और बोला चैतन्य महाप्रभु ने उसकी तरफ देखा, ये क्या, हरि बोल, तो शेर भी बोला हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु शेर से भी हरि बोल बोलवा दिया, अभी हम तो फिर भी मनुष्य, मलेच्छवी होता तो मनुष्य ही है, ये तो किसी भी जानवर से हरि नाम बुलवाते हैं, किसी भी जानवर को मंत्र भी दे देते हैं, हाथियों से भी बुलवा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु वो सर्व दयालु अवतार हैं जो जीव मात्र पर कृपा करते हैं, जीव मात्र पर। तो हमारा प्रोसेस क्या है कि हम बिलीव करते हैं, पहले व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो तभी हमारे पास आएगा, या हमारे मंदिर आएगा, या हमारे सत्संग में आएगा, किसी भी जगह पे। तो थोड़ी सी श्रद्धा है तो उसको साधु संग प्राप्त होना चाहिए। वो जो श्रद्धा है वो भक्तिलता बीज बनेगी, वो भक्तिलता बीज को पानी दिया जाता है साधु संग से, और उसको साधु संग मिलते ही हम उसको क्या करते हैं, राइट अवे साधना भक्ति भजन क्रिया सिखा देते, राइट अवे स्टार्ट भजन क्रिया। ऐसा नहीं कहते अच्छा नहीं नेक्स्ट वीक हमारे गुरु आएंगे फिर आपको वो मंत्र जपने का बताएंगे तब आप मंत्र जपना स्टार्ट करना, नहीं। आप आज आए हो, पहली बार आए हो, कुछ नहीं जानते, राइट अवे मंत्र सब कुछ हम देने के लिए तैयार है। बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद, ये वाली बीट पे आप ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करो। और इस मंत्र से जब आपको पंच तत्व का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो आप क्वालिफाइड हो गए हरे कृष्ण मंत्र को जपने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई दीक्षा, कोई गुरु या कुछ भी कंपलसरी नहीं बताया, लेकिन केवल मंत्र जप शुरू करने के लिए। मंत्र जप हम शुरू कर देते हैं जब हमारे कोई गुरु नहीं है, कोई पता नहीं है कौन गुरु होंगे क्या, जो कुछ भी है मंत्र जप हम लोगों को शुरू पहले से करा देते हैं। हालांकि ये वैदिक रीति नहीं है, लेकिन ये कलयुग है, इसको कहते हैं एमरजेंसी सिचुएशन। जैसे एक भक्त बता रहे थे किसी शहर में गए और वहां कर्फ्यू लगा हुआ था और उन्हें कहीं कॉलेज में प्रवचन के लिए जाना था, कॉलेज के अंदर तो कर्फ्यू नहीं है लेकिन बाहर कर्फ्यू है, तो अंदर तो सब स्टूडेंट्स वहां स्टेज पे वेट कर रहे हैं कि ये प्रभु जी आए और हमें बताएं, लेकिन वो बाहर कर्फ्यू में फंसे हैं। तो भक्तों ने एक नया तरीका निकाला, उनको एम्बुलेंस में डाल लिया, एम्बुलेंस में बैठा के एयरपोर्ट से कॉलेज ले गए। रास्ते में पुलिस ने रोका तो सब अपना स्ट्रेचर पे लेट गए कि यहां तो बिल्कुल इमरजेंसी है। इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी ये है कि लोग बेकार में अपना जीवन माया के पीछे भाग भाग के बर्बाद कर रहे हैं और ये प्रभु जी को जाके उनको भगवान नाम की महिमा बतानी है, उनको जप करना स्टार्ट कराना है। जा रहे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, तो ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है। श्रील प्रभुपाद को जब उनके गुरु मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ओ पहले तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, जब तक हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है कौन हमारी बात सुनेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंट होना है इस शरीर से, जब तक हम इस शरीर के ऊपर इसके अंदर डिपेंडेंट हैं तब तक कोई भी इंडिपेंडेंस हमें कुछ दे नहीं सकती, सबसे पहले इस शरीर से हमें स्वतंत्र होना है। उसके बड़ी स्वतंत्रता और कोई नहीं है, उसके अलावा सब स्वतंत्रता बेकार है। सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि किसी तरह से हम इस शरीर से स्वतंत्र हो जाएं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये नाम की महिमा चैतन्य महाप्रभु ने सबको फ्री में नाम बांटा, यहां तक कि नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मानते थे उस समय का। श्री अद्वैताचार्य ने भी उनको अपने घर बुला के अपने पिता के श्राद्ध में सबसे पहले भोजन करवाया। सबसे पहले भोजन मतलब जो सबसे सीनियर ब्राह्मण होना चाहिए उसको मिलना चाहिए, उन्होंने हरिदास ठाकुर को कराया। जब ब्राह्मणों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि तुम लोग तो ब्राह्मण हो, ये तो वैष्णव है, सर्वोच्च वैष्णव है ये, इसलिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पिता के श्राद्ध का भोजन इसको प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को अपने तरीके से हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में एस्टेब्लिश किया। आंदोलन, आंदोलन मतलब हम हर समय जाके ना केवल हरि नाम का जप करते हैं, सबको बांटते हैं फ्रीली। गोलोकेर प्रेम दान हरि नाम संकीर्तन, ये ऐसा धन है जो जितना ज्यादा बांटो उतना ज्यादा बढ़ेगा। मोर यू डिस्ट्रीब्यूट मोर यू गेट, जितना ज्यादा हम इसको लोगों को बांटते हैं उतना ज्यादा हमें प्राप्ति होती है। जो एक्चुअल धन है या कोई भी चीज आप बांटने जाओगे खत्म हो जाएगी, कितना भी है बांटते रहो खत्म हो जाएगा। लेकिन हरि नाम क्योंकि ये गोलोक का प्रेम धन है इसलिए ये कभी खत्म नहीं होता, जितना ज्यादा बांटो उतना ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, अभी तक जो बताया उसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है? फिर हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद कह रहे तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, सद्गुरु की शरण शरणागत होकर दंडवत प्रणाम विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जाने। भगवान को जानना समझना आसान नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्चना। केवल अगर हमने भगवान के जन्म और उनके लीलाओं को जान लिया तो फिर हमारा दोबारा यहां जन्म होगा? नहीं होगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं फिर दोबारा से इस संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में तभी तक जन्म लेने की आवश्यकता है जब तक हम भगवान को, भगवान की लीलाओं को, उनके जन्म को, उनके आविर्भाव तिरोभाव, उनकी लीलाएं, उनको नहीं समझते तब तक हमारे यहां जन्म होते रहेंगे। एक बार समझ में आ गया तो फिनिश्ड। लेकिन भगवान का एक नाम अधोक्षजा भी है। अधोक्षजा का मीनिंग वो किसी को समझ में भी नहीं आने वाले। तो अगर वो किसी को समझ में आने वाले नहीं है तो फिर कैसे हम उनको तत्वतः जान पाएंगे? गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से। एक्चुअली आंसर इज कृष्ण कृपा। केवल कृष्ण कृपा से हम कृष्ण को जान सकते हैं, लेकिन कृष्ण कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी? कृष्ण कृपा हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। गुरु कृपा है तो कृष्ण कृपा है, और अगर कृष्ण कृपा है तो हम भगवान को समझ सकते हैं, और अगर हमने भगवान को समझ लिया तो फिर हमें दोबारा से जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई प्रश्न है? ओके, आगे। तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। अब ज्ञान का उपदेश तो यहां हम सब दे रहे हैं, हर रोज कोई नया स्पीकर आके ज्ञान का उपदेश देता है। क्या हमें भगवान नाम के प्रचार करने का, भगवान के बारे में बताने का अधिकार है? यह अधिकार तो केवल शुद्ध भक्तों का होता है। क्या हम शुद्ध भक्त हैं? नहीं। फिर क्यों करते हम, फिर क्यों हम प्रचार करते जब हम शुद्ध भक्त नहीं है? तो हम शुद्ध भक्त नहीं होते हुए भी प्रचार करते हैं शुद्ध भक्त की आज्ञा के अंतर्गत। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, उनकी आज्ञा के अंतर्गत हमारे गुरु प्रचार कर रहे हैं और अपने गुरु की आज्ञा के अंतर्गत हम प्रचार कर रहे हैं। तो जो हम कहते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। तो उस तरह से हमें प्रचार करने की, लोगों को हरि नाम देने की, लोगों को भगवान के बारे में बताने की, भगवान नाम के बारे में ज्ञान देने की, ये सब हमें अधिकार है। किस हिसाब से अधिकार है? वो हमारे गुरु के दिए हुए अधिकार के हिसाब से हमें वो अधिकार है। अगर जो वो अधिकार हमारे गुरु हमें नहीं देते तो हम बोनाफाइड प्रीचर नहीं है, फिर हम अप्रामाणिक। तो इसलिए प्रचार श्रील प्रभुपाद ही कर रहे हैं, हम तो उनका बताया हुआ रिपीट करते हैं और उसको और कुछ अपने शब्दों में बता देते हैं, वो भी गुरु की और टेंपल अथॉरिटीज के आज्ञा के अंतर्गत, ऐसे ही नहीं अपने मन से। सभी प्रकार के मंत्रों को वैद्य गुरु से ग्रहण करना चाहिए। आगे बताया, पद पुराण में कहा गया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्र निष्फला मता। शिष्य परंपरा चार संप्रदाय चार प्रकार के हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। हम कौन से संप्रदाय के हैं? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में बाद में मध्वाचार्य एक मेन गुरु हुए, क्योंकि उनसे पहले शंकराचार्य ने आके, या भगवान ने शंकराचार्य को भेज के वेदों का जो साकार भक्ति है भगवान के साकार रूप का, एक्चुअली पहले भगवान स्वयं आते हैं और वेदों का भी खंडन करते हैं, ग्रंथों का भी खंडन करते हैं, शून्यवाद का प्रचार करते हैं, कुछ नहीं है बुद्ध रूप में। फिर भगवान शिव जी को भेजते हैं कि आप जाओ वेदों की शास्त्रों की पुनर्स्थापना करो। तो पुनर्स्थापना शिव जी करते हैं शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के रूप में, लेकिन वो स्थापना निराकार में हो जाती है, सारा संसार निराकार हो जाता है। तो निराकार के प्रचार में साकार को लाने के लिए भगवान एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी को भेजते हैं, उनका नाम क्या है? हनुमान। हनुमान को भेजते हैं, हनुमान आते हैं मध्वाचार्य के रूप में। हनुमान जी मध्वाचार्य के रूप में साकार सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। आपने शायद देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसे दो उंगली करे हुए एक साधु ऐसे करके बैठे रहते हैं, वो मध्वाचार्य हैं। जो द्वैत की स्थापना करते हैं। द्वैत मतलब परमात्मा और आत्मा दो अलग अलग हैं, और अद्वैत मीनिंग वन, वही परमात्मा और वही परमात्मा का अंश में सेम। जैसे परमात्मा परमात्मा का अंश में हम दोनों सेम है। मध्वाचार्य कहते हैं नहीं, हम गुणात्मक रूप से सेम हो सकते हैं, लेकिन हम एक तो मात्रा में बहुत माइन्यूट हैं और हम भगवान नहीं भगवान के सेवक हैं, इसलिए हम सबको नाम मिलते हैं दास और दासी। कितने दास हैं यहां? मिस्टर दास बहुत सारे मिस्टर, और दासियां बहुत सारी दासी हैं। कुछ दासी हाथ भी नहीं ऊपर कर रहे लेकिन है, कोई बात नहीं। दासी होना गर्व की बात है, क्योंकि हम यहां सबको दास और दासियां भगवान के बना रहे हैं, और अगर हम भगवान के दास और दासियां नहीं बनेंगे तो किसके बनेंगे? किसी और के बनेंगे, भगवान के अलावा बाकी सब तो मंडेन है, माया है। इसलिए अच्छा है कि दास और दासी बन जाओ भगवान के, नहीं तो दासता करेंगे किसी और की। तो ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य हुए, और ब्रह्म संप्रदाय में ही बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उसको एक्सेप्ट किया, ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को, सॉरी ब्रह्म मध्व संप्रदाय को एक्सेप्ट किया, और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय तब से बन गया जब से चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म मध्व संप्रदाय को एक्सेप्ट किया। उसके आगे जो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम अपने आप को ब्रह्म संप्रदाय का नहीं कहते, ब्रह्म मध्व संप्रदाय का नहीं कहते, हम अपने आप को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का कहते हैं, और उसके आगे अब हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में हैं, क्योंकि हम दूसरे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से काफी चीजें बहुत डिफरेंट करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कहा या श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बताया। हमारी एकाची अलग होती है, गौड़ीय मठ से मैच नहीं करते सब चीजों की डेट्स में एकाची के साथ साथ अंतर आ जाता है। हम लोग चाय नहीं पीते, बहुत से वैष्णव संप्रदाय चाय को नशा नहीं मानते। कैसे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, ये तो वो ही जाने, लेकिन वो चाय को नशा नहीं मानते। श्रील प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं वो चाय को नशा मानते हैं। फिर रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय का मंदिर बिल्कुल हमारे पीछे वाला जो है वो कुमार संप्रदाय का है। ये दीवार से पीछे, हमारी दीवार से पीछे रोड और रोड के उस तरफ, और आगे टटिया स्थान, और बाके बिहारी जी भी कुमार संप्रदाय से हैं, लेकिन बाके बिहारी जी में जो पूजा करते हैं वो गोस्वामी लोग हैं, लेकिन वो विग्रह कुमार संप्रदाय में प्राप्त किए गए थे। और श्री संप्रदाय वो बहुत मशहूर संप्रदाय है, जो आप जानते हो सारे बालाजी के मंदिर सारे संसार में अलग अलग जगह बालाजी के मंदिर बने हुए हैं, ये सब श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा रिच मंदिर बालाजी या तिरुपति बालाजी, ये सब श्री संप्रदाय के। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि इन प्रमाणिक संप्रदायों में से किसी एक का मंत्र ग्रहण करे। श्रील प्रभुपाद ऐसा बता रहे कि इन चारों संप्रदाय में से किसी एक का मंत्र ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इन चारों में से बेस्ट कौन सा है? ब्रह्म द्वगौड़ीय संप्रदाय। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसी भी चारों में से किसी भी संप्रदाय को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म माध्व संप्रदाय को ही एक्सेप्ट किया। इसलिए हम समझते हैं कि ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय ये सभी संप्रदायों में से बेस्ट है। आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर जो हम किसी प्रमाणिक संप्रदाय से मंत्र ग्रहण नहीं करते तो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें संप्रदाय ग्रहण करना चाहिए, गुरु धारण करने चाहिए और अपने मंत्र और बताई गई साधना भक्ति की विधि के द्वारा साधना करनी चाहिए। केवल अपने मन से नहीं, आज मैं ये कर रहा हूं, कल मैं वो कर रहा हूं, परसों मैं कुछ और कर रहा हूं, सब चीज तो भगवान के लिए किसी ना किसी तरह से भगवान के पास ही पहुंचेगी। नहीं, हमारा जो सिस्टम जैसे श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ है उसको हम जितना अच्छी तरह से पालन करते हैं उतना हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति उतने ज़्यादा जल्दी से और सही रूप से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए पहले हमें क्या चाहिए? गुरु प्रसन्न हो। गुरु प्रसन्न हो उसके लिए हमें क्या चाहिए? जो कोई भी हमारी इमीडिएट अथॉरिटीज हैं वो अगर हमसे प्रसन्न है तो गुरु प्रसन्न है, और अगर गुरु प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। उसके बाद अगर कृष्ण मुझसे प्रसन्न है और मेरे अंदर कृष्ण प्रेम है तो चाहे जन्म कितने भी मिले, कहीं भी मिले, कोई चिंता नहीं है। अगर जो कृष्ण प्रेम मन में है, और अगर कृष्ण प्रेम नहीं है तो तब तक हमें कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करनी है, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है, भजन क्रिया को बढ़ाना है और निष्ठा और भाव की तरफ जाना है अनर्थ निवृत्ति करके। ठीक है, इतना ही बताया। इसके आगे जो कोई भी प्रश्न है हम ले सकते हैं, जो कुछ और किसी को जानने की इच्छा है। श्रीमद् भागवतम में से, भगवद गीता में से, कहीं से भी कुछ भी जानना चाहते हो, कोई जिज्ञासा? यस,
आपने कहा महाप्रभु को ब्रह्म गौर या माता संप्रदाय को मानते हैं, जो और तीन संप्रदाय हैं वो क्या चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते?
चैतन्य महाप्रभु को सब मानते हैं, लेकिन चैतन्य वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं मानते और वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष मानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भगवान हम मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है इसलिए भगवान को त्रियुगी कहा जाता है कि कलयुग में अवतार ही नहीं लेते, क्योंकि ये जो अवतार है ये छिन्न अवतार है, छुपा हुआ अवतार है, सामने खड़े होके भी किसी को पता नहीं चलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी कहीं भी ये एक्सेप्ट नहीं किया अपने इंटरनल ग्रुप के अलावा कि वो भगवान है। वो भक्त के रूप में अवतार लेके आए थे, भक्त की लीला करी और सब लोग जो कोई भी हम उनके अनुयायियों के अलावा जो कोई भी उनको मानते हैं भक्त के रूप में ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते। जैसे कि गीता प्रेस वगैरह में आपको चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बुक्स मिल जाएंगी, उनकी लीला भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो इस तरह से बताएंगे कि ये एक महान भक्त थे और हम उनको इस तरह से पूछते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ये हमारा और उनका डिफरेंस है, मानते सब हैं लेकिन समझते कम है।
हरे कृष्ण गुरु, बहुत ही सुंदर व्याख्यान था। भक्तवाद करके ग्रंथ है, उसमें श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को स्पष्ट साक्षात भगवान के तौर पर वर्णन किया गया है और उससे श्लोक है। तो रामानंद संप्रदाय श्री संप्रदाय के लिए वर्तमान के भक्त हैं वो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान के तौर पर ही बोल भी रहे अपने व्याख्यानों में। और दूसरा मेरा प्रश्न है एकादशी को संबंधित कि अगर सूर्योदय की तिथि में एकादशी की तिथि में सूर्योदय हुआ है तो वो हम स्वीकार करते हैं भाष्य के लिए, और दसवीं में अगर थोड़ा भी टेस्ट हो गया तो हम भाष्य में स्वीकार नहीं करते। तो प्राय यही तो वैष्णव में यही तो कॉमन है, तो गौरी भ्रमण की अलग क्यों पड़ जाती है?
वो ही मैं कह रहा था, पहले नंबर वन जो आप बता रहे हो, क्या होता है कि एक बार ऐसे फिलाडेल्फिया में एक माताजी से मेरी बात हो गई, वो लोग पुष्टि मार्ग के, तो मैंने ऐसे ही प्रवचन में कह दिया कि पुष्टि मार्ग में राधा रानी को नहीं मानते। तो वो तो बाद में ऑलमोस्ट मेरे से लड़ने को आई कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, हम तो पुष्टि मार्ग हम तो राधा रानी को मानते हैं। अब मैंने कहा आप राधा रानी को मानते हो, एक्चुअली मैंने एक्सैक्टली ये नहीं कहा था लेकिन किसी तरह से किसी शब्दों में, तो मैंने कहा मानते तो हो लेकिन आप उनको पूछते नहीं कि नहीं हम तो पूछते हैं। तो मैंने कहा फिर आप देख लो आपके जितने भी मंदिर हैं उसमें जितने भी ऑल्टर हैं उस पे कितने ऑल्टर्स पे राधा रानी मिलेंगी, और हमारे कितने मंदिर हैं उसमें कितने ऑल्टर हैं उसमें कौन कितने ऑल्टर पे आपको राधा रानी नहीं मिलेंगी, तो उससे पता चल जाएगा। तो अगर जो ये लोग वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को भगवान मान रहे हैं तो मुझे एक का नाम बता दो इसके ऑल्टर पे चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे, और हमारा एक मंदिर बता दो जिसका ऑल्टर पे चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे। तो मानना और मानने में अंतर होता है। नंबर दूसरा प्रश्न आपका क्या था?
एकादशी।
एकादशी शिल प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि मंगल आरती से 2-3 घंटे पहले एकादशी लग जानी चाहिए, तो उस दिन एकादशी होगी। और हिंदू सिस्टम जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द डे देखता है कि इस दिन में 20 घंटे एकादशी है, चलो इस दिन एकादशी हो गई, अब 12 घंटे से ज्यादा 13 घंटे इस दिन में आ गई तो वो एकादशी हो गई। तो इस नियम से कभी कभी हमारी एकादशी अलग हो जाती, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मंगल आरती से 2-3 घंटे पहले एकादशी लग गई तो तब है। अब अगर वो मंगल आरती पे लगती है तो हम कहते हैं अब हमारी कल होगी, बाकी सब कहते हैं कि अब मंगल आरती पे तो लग गई अब आज ही हो गई। हम श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसा बताया कि अब वो कभी कभी बीच में एक तिथि गायब भी हो जाती है, तो हम वो एक अच्छी को गायब नहीं होने देते, कभी हम उसका व्रत कर ही लेते हैं उस हिसाब से कि किस दिन वो मंगल आरती से पहले लग गई, कितने भी समय खत्म भी हो गई लेकिन फिर भी हम उस दिन उसका व्रत कर लेते हैं। कभी कभी आपको पता तिथि गायब हो जाती है, कहां है ही नहीं। और कोई प्रश्न? भगवान को तत्व से कैसा समझा जाए, वो इतना खुल के तो मैं तभी बताऊंगा जब मैं खुद समझ जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश है। और श्रील प्रभुपाद अपने गुरु में, श्रील प्रभुपाद में अपनी परंपरा में विश्वास है, तो ये विश्वास और श्रद्धा ही हमें भवसागर के पार ले जाने वाली है, और इस विश्वास और श्रद्धा की वजह से ही हम भगवान को तत्वतः समझ जाएंगे। तत्वतः भगवान को समझना इतना कठिन है इसलिए बताया जाता है कि भगवान की माया सबको रोक के रखती है, महामाया, योग माया, वो सबको भगवान सबको मोहित कर देती है। जैसे कि आपने ये लीलाओं में देखा, इवन ब्रह्मा को मोह में डाल दिया कि ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है, इवन ब्रह्मा, हम किस, हमारी क्या बिसात है, ब्रह्मा क्या गया, हम तो कुछ भी नहीं है, एवन ब्रह्मा को मोह में डाल दिया कि ये भगवान नहीं हो सकता। वो भगवान को टेस्ट करने गए, इंद्र को मोह में डाल दिया कि ये क्या, गोवर्धन पर्वत ही तो उठा लिया, कौन सी बड़ी बात है, अच्छा। तो भगवान उसको पूरी तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं भगवान हूं, क्यों नहीं, क्यों भगवान को समझ के ब्रह्मा आए थे, क्योंकि भगवान ने अगासुर को मार दिया। अगासुर को मारना देवी देवताओं में सब में मिलके भी बस की नहीं था कि वो अगासुर को मार दे। भगवान ने अकेले अपने दो नन्हे नन्हे कोमल हाथों से अगासुर को चीर डाला, केवल दो नन्हे से हाथ। सारे देवी देवता अपने दिव्यास्त्रों को भी लेके अगासुर को मार नहीं सकते, इसीलिए ब्रह्मा कंफ्यूज हो गया, ये क्या, किसी ने अगासुर को मार दिया, किसी बालक ने मार दिया, खाली दो हाथों से मार दिया, ये तो भगवान ही होगा। और इतना समझ के भी जब वो भगवान के दर्शन करने आए तो बोला ये तो भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान को तत्व से जानना इतना कठिन है कि ब्रह्मा भी नहीं जान पा रहे, हर कोई गलती करता है, शिवजी भी गलती करते हैं। तो आप समझते हो, जैसे कि एक होता है ईश्वर, किसी भी चीज के ऊपर किसी का कंट्रोल है तो वो ईश्वर है। जैसे अपने बच्चों के लिए, उस छोटे बच्चों के लिए उसके माँ बाप ही ईश्वर है, कंट्रोल में छोटे बच्चे, बड़े होके क्या करें वो आगे पता चलेगा, लेकिन छोटे बच्चे कंट्रोल में। फिर उससे कोई हायर अथॉरिटी, वो ईश्वर है, म्युनिसिपल अथॉरिटी और स्टेट वाइड, नेशन वाइड, उसके ऊपर ईश्वर है जो लोग वेदर को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अर्थ को एक आ जाता है, हमारे यहां जो कोविंद है या नरेंद्र मोदी है, कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते कि इस एरिया में अर्थ को एक नहीं आना चाहिए, कर भी देंगे तो कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, तो वो उनके ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है। फिर उन ईश्वरों के ऊपर, ये अब हम ईश्वर पहुंच गए देवी देवताओं तक, उन ईश्वरों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर एक है महेश्वर, उनके भी लीडर है, ये देवी देवताओं में ब्रह्मा तक सब आ गए, उनके ऊपर फिर महेश्वर है, महेश्वर शिव है जो उनके भी नियंत्रक हैं, इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और शिव से ऊपर है परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर से अर्थ है नारायण नप, नारायण कोई भी फॉर्म ऑफ विष्णु, कोई भी विष्णु के अवतार, कोई भी विष्णु के तत्व। तो जब हम परमेश्वर लेवल पे पहुंचते हैं तब परफेक्शन आता है, परफेक्शन से मतलब ये लोग भूल नहीं करते, माया के प्रभाव से परे हैं, माया कभी किसी विष्णु तत्व को प्रभाव नहीं कर सकती। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी विष्णु तत्व ने कोई गलती कर दी, सुना है? कोई भी विष्णु तत्व ने कोई ये कभी गलती नहीं करते, उनसे नीचे सब कभी ना कभी गलती कर जाते हैं। भागवतम और पुराणों में वो सब गलतियों का सबका ब्यौरा दिया हुआ है, कब किसने कहाँ गलती करी। इंद्र भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, शिव भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करते। तो परमेश्वर से नीचे जो कोई भी है वो भगवान को समझने में फेल हो सकता है। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है कि हमें भगवान तत्वतः समझ में आ जाए। वो कैसे होगा? होगा तो कृष्ण कृपा से ही, लेकिन वो कृष्ण कृपा हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होगी। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये माता जी का प्रश्न, माइक किसके पास है? हरे कृष्ण। क्या
शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत क्या चीज होता है?
शुद्ध द्वैत और शुद्ध अद्वैत का अर्थ है कि अद्वैत मीनिंग एक ही है, भगवान या मैं, परमेश्वर या परमात्मा या आत्मा, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा की अंश है। और द्वैत मीनिंग ये दो है, एक नहीं है, दो है, परमात्मा अलग और आत्मा अलग। अभी जिसके जो प्रश्न है वो पर्सनली आके पूछ सकते हैं, हमें ये क्लास को एंड करना पड़ेगा, इधर प्रसाद होने वाला है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम आनंदे।